हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 9। ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना टेक्स्ट है। यू समझो इस एक श्लोक के अंदर भगवान ने बहुत कुछ बताया है। तो इस श्लोक को हमें पूरी जिंदगी याद रखना है, क्योंकि इस श्लोक में हमें जीने का तरीका बताया। इसमें भगवान ने कर्म योग की परिपूर्णता बताई है और कर्म कांड से भी संपर्क जोड़ा है। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा, कि आपको अपने नियत कर्म करने ही पड़ेंगे और कर्म ना करने की बजाय कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर यात्रा पीछे दे न प्रसिद्धिये कर्मणः। यदि आप अकर्म होकर बैठ जाओगे तो अपनी शरीर यात्रा को भी पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो फिर कर्म करना अनिवार्य बताया भगवान ने। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कर्म तो बंधन का कार्य है। अब कैसे कर्म करें कि हम कर्म भी करें और बंधन में भी ना फंसे? तो भगवान श्री कृष्ण आज हमें वो विधि बता रहे हैं कि तुम कर्म भी करो लेकिन तुम्हें किसी भी बंधन में ना फंसना पड़े, वो कौन सा तरीका है। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, तो कृपया इसको मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांतेय मुक्त संग समाचर। शब्दों का अर्थ देखिए, यज्ञार्थात् अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। अब देखो यज्ञ दो तरह, यज्ञ का मतलब दो होते, मतलब कैसे, एक तो यज्ञ एक विधि होती है, जैसे हम करते हैं ना, एक है ना अग्नि जलाते हैं, उसके अंदर हवन करते हैं, ठीक है, उस एक यज्ञ विधि है। और दूसरा यहाँ पर क्या मतलब बताया गया है, विष्णु के लिए किया गया, यानी यज्ञेश्वर के लिए। यज्ञ का मतलब होता है कि सेक्रीफाई, ना, तो इसका मतलब है वो किसके लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं यज्ञार्थात, यानी यज्ञ के अर्थ के लिए, यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। समझ में आया? अभी यहाँ पर वो यज्ञ नहीं बात की जा रही है, वो जो यज्ञ हम करते हैं ना स्वाहा, वो वाली बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर यज्ञार्थात मानी वो भगवान जो यज्ञेश्वर है, उस यज्ञेश्वर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं यज्ञार्थात। ठीक है, आगे कर्मण, कर्मण का मतलब होता है कर्म की उपेक्षा, यानी अगर आप यज्ञार्थात कार्य करते हो, यानी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु की भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन कर्मणो न्यत्र, न्यत्र मतलब अन्यथा, इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं, यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, यदि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5.29 में भगवान ने बता दिया कि यज्ञार्थ कौन है, यज्ञों को भोगने वाला कौन है, भगवान कहते मैं हूँ, कृष्ण कहते मैं हूँ। तो यहाँ पर उसी बात को पहले बता दिया कि यदि आप यज्ञार्थ यानी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हो वो तो ठीक है, लेकिन कर्मणो न्यत्र उसके अतिरिक्त आप कोई भी कार्य करोगे, लोकोयम कर्म बंधन, मतलब लोको मन इस संसार में अयम यह कर्म बंधन, कर्म का बंधन बन जाएगा। अगर आप कोई भी कार्य, चाहे आप देश सेवा कर रहे हो, चाहे आप समाज सेवा कर रहे हो, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हो, यदि आप ये सोच कर कर रहे हो कि मैं कार्य अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य, गंदे कार्य तो आपको बंधन में फंसाएंगे ही फंसाएंगे, लेकिन अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है अपितु बहुत अच्छा है, तो वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तो फिर वो आपके बंधन का कार्य बनेगा। तो क्या करना है, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम यानी तद यानी उस, अर्थम यानी उसके लिए, कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तो फिर उसी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, तदर्थम वही लाभ प्राप्त करने के लिए, वही लाभ बना कृष्ण को प्रसन्नता जिससे आपको मिल, आपको ऐसा लगता है या गुरु साधु और शास्त्रों के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो आचार्यों के अनुसार हमें निर्देशन प्राप्त होते हैं कि इस तरह से भगवान प्रसन्न होते, वो कार्य यदि हम करते हैं तो फिर तो आप बंधन से छूट जाओगे। आगे कहते हैं मुक्त संग समाचार, मुक्त मना मुक्त संग यानी संग से, यानी फल से या बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, समाचर भली भांति आचरण करो। अब यहाँ पर समाचर शब्द से तो भगवान ने मतलब सब कुछ बोल दिया कि आपको क्या करना है, कार्य को, जो आपका कार्य है ना, जैसे जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, उसके अनुसार आपका जो कार्य है उसको समाचर अत्यंत ही सुंदर तरीके से करना। ऐसे नहीं सोचना है कि अब मैं, मेरी जान फंस गई है इसमें, मैं कार्य कर रहा हूँ, नहीं, समाचर मतलब दिल से कार्य करो, अच्छे से करो। क्यों अच्छे से करो, क्योंकि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, बल्कि क्यों कर रहे हो, तदर्थम कर्म कौन्तेय, क्योंकि आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो और कृष्ण ने आपको ये ड्यूटी प्रिस्क्राइब की है, तो आपको उसकी प्रसन्नता के लिए ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, हृदय से करना। अब देखो अर्जुन क्या करना चाहते थे, अर्जुन बोल रहे थे, अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन का वर्ण क्षत्रिय था, आश्रम ग्रस्त था, और लेकिन वो क्या सोचते थे कि मैं ना युद्ध तो मुझे अच्छे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे पसंद ही नहीं लग रहा है, इससे बेहतर मैं क्या करूं, मैं भगवान की भक्ति कर। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान बताना चाह रहे, फिर भी अर्जुन चाहते थे कि यही बात मुझे कृष्ण के मुख से पता चले कि मुझे ना कार्य यही वाला है, जैसे जान छुड़ाने के लिए अब युद्ध आया है तो कर लूं, अब करना ही है तो कर लूं, ऐसे भगवान बोलते नहीं करना है आपको, आपको यही सोच के करना है कि क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपका कार्य युद्ध करना है, तो ये सोचकर मत कार्य करो कि इससे मुझे क्या रिजल्ट, क्योंकि अर्जुन क्या सोचते थे कि इससे तो मुझे कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा, तो कृष्ण बोल रहे थे साइड में रखो अपने फायदे को, क्योंकि यदि आप अपने फायदे को देखोगे, यदि आप अपने लाभ या हानि का विचार करोगे, फिर तो तुम बंधन में फंस जाओगे। ऐसा मत सोचो, बल्कि क्या करो, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयं कर्म बंधना, अगर आप यज्ञार्थात कर्म करोगे, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे, तो फिर तो मुक्त संग समस्त बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए आप अपना कार्य समाचर अच्छे तरीके से करो, और अन्यत्र यहाँ पर लिखा अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन, और इसकी अतिरिक्त आप कुछ भी सोच के कार्य करोगे तो वो आपके बंधन का कारण बनेगा। अब यहाँ पर देखो यज्ञार्थात कर्म लिखा है ना, कुछ कुछ लोग यज्ञ करते हैं, इसको कुछ लोग इस श्लोक को गलत भी लेते हैं कि यज्ञ करते भगवान ने कहा यज्ञ वाले कर्म करो, तो यज्ञ कर्म कांड भी होता है ना, यज्ञ में कर्म कांड कैसे होता है, कुछ लोग है ना पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ है ना धन प्राप्ति के लिए, या फिर दूसरे दूसरे यज्ञ करते हैं, यानी कि उस यज्ञ का उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना होता है। लेकिन भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, यज्ञाधात कर्म यानी आप भौतिक लाभ के लिए नहीं, परंतु विकसित बुद्धि के लिए यज्ञ करो, आप कार्य करो, अपने कर्म करो और उसको यज्ञ समझ कर करो, और है ना इसके साथ साथ क्या करो, संसार की योजनाओं में सम्मिलित रहो। उस संसार की योजना कैसे, जो वर्ण और आश्रम धर्म आपका है, जो भी आपका उस टाइम पर कर्तव्य है, उसको अच्छे तरीके से पूरा करो। अनुवाद देखिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा बंधन बनेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। उनकी प्रसन्नता के लिए अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, मुक्त संग परम विजित, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो फिर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और अगर इसके अतिरिक्त कोई कार्य करेंगे, यानी कि जिसमें भले वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा भी कार्य कर रहे हैं ना, तो वो बंधन का कार्य कारण बनेगा। अत्यंत सुंदर श्लोक है, श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से आज का श्लोक समझाएंगे, तो कृपया हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर को निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः प्रभुपाद जी वापस बता रहे हैं कि देखो पिछले श्लोक में भगवान बता चुके हैं ना, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मणा, कि अगर आप अकर्म होकर बैठ जाओगे तो शरीर यात्रा नहीं चलेगी आपकी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें पुनः वही याद करवा रहे हैं कि देखो चूंकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, तो कर्म अगर हम लोग करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। इसलिए अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, विशुद्ध सामाजिक स्थिति यानी जो समाज में जो स्थिति के हिसाब से, यानी वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार जो आपके कार्य बनाए गए हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस उद्देश्य की, शरीर निर्वाह के लिए, कि बस सबका सारे लोग को बैलेंस में हर चीज प्रोवाइड हो सके। जैसे ब्राह्मण अपना कार्य करेगा तो फिर क्या होगा, सब लोग को शिक्षा देगा, क्षत्रिय अपना कार्य करेगा तो क्या होगा, सारे समाज को संरक्षण प्राप्त होगा। वैश्य अपना कार्य करेगा तो इससे क्या होगा, सबको अनाज और इत्यादि, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे वो सब सारे जीवों को मिलेगा। अब अकेला बंदा जिसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, तो इससे क्या होगा, समाज की पूरी व्यवस्था सत्यानाश हो जाएगी। तो सब सारे समाज की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है गुण और कर्मों के अनुसार। जैसे आपके पिछले जन्म के कर्म होंगे उसके अनुसार आपको इस प्रकृति के गुण प्राप्त होते हैं और उसी के अनुसार आपका स्वभाव होता है और उसी के अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है। तो इस उद्देश्य से, यानी शरीर निर्वाह का उद्देश्य सबका पूरा पूरा हो रहा है यदि कोई अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, यहाँ पर लिखा गया ना, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्नत्र। तो ये भगवान विष्णु का मतलब है यहाँ पर कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। आगे सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञोवै विष्णु के जितने भी कार्य हैं वो केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए यज्ञ जितने भी हैं वो किए जाते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, दोनों एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है दोनों से। यानी कि अगर कोई अपने मुकर जो यज्ञ है उसके वो कर रहा है या डायरेक्ट से भगवान की सेवा कर रहा है तो दोनों का प्रयोजन एक ही होता है। एक ही प्रयोजन माना, अगर भगवान विष्णु की सेवा से क्या मतलब है कि अगर कोई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नवधा भक्ति को कर रहा है तो उससे भी क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई अपने नियत कर्म कर रहा है, जैसे अब अर्जुन को इस युद्ध के अवसर पर क्षत्रिय होने के नाते यज्ञ करना था क्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो बैठ के बोले कि नहीं मैं अभी कथा सुन रहा हूँ, मैं अभी है ना कीर्तन कर रहा हूँ, अभी मैं ये क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अभी बैठ जाता हूँ, मैं माला करता हूँ। तो ये इस तरह से नहीं, मन भगवान नहीं चाहते कि हम अपने धर्म का पालन ना करें, जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन ना करें, भगवान ऐसे नहीं चाहते। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं साफ साफ कि दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, दोनों एक ही प्रयोजन से होता है। अतः लेकिन उस टाइम पर आप कोई अपना कार्य कर रहे हो तो उस टाइम पर कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए कि मैं केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ये जो सारा का सारा मैं कार्य कर रही हूँ वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसकी अगर ये बुद्धि माइंड में नहीं आती है तो क्या होगा, लोकोयम कर्म बंधन, फिर तो बंधन का कारण बनेगा। फिर क्या होगा, आप अगर अच्छे से अच्छा कार्य करोगे ना फिर भी वो बंधन बनेगा। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हो केवल और केवल ये सोच कर करना है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करूं। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। अब इस श्लोक में क्या बताया गया कि यज्ञ अर्थात कर्मण्योन्नत्र, अगर यज्ञ के लिए कार्य कर रहे हो यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो तो वो मुक्त संघ समाचार वो अच्छे से करो क्योंकि उसे मुक्ति मिलेगी। तो कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं और ना भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये कृष्ण भावनाम भावित जो कार्य होते हैं, कृष्ण भावनामृत में जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वो कभी भी बंधन का कार्य नहीं बनते बल्कि बंधन से मोक्ष दिलाते, मुक्त संग समाचार। और आगे बहुत अच्छा श्री प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, यानी कि जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार आप कार्य करते हो वो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य करना, कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन से आश्रम है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण है, और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यासी ये चार आश्रम है। तो इनके अनुसार जो जो कार्य किए जाते हैं उनका पूरा उद्देश्य क्या होता है, भगवान के प्रति यज्ञ के अनुसार वो कार्य कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ये कहाँ से, विष्णु पुराण 3.8.8 में क्या लिखा है, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परम पर पुमान विष्णु आराध्यते। कि यदि आप वर्णाश्रम धर्म का कोई भी जीव यदि कोई भी मनुष्य पालन करता है तो उसका मतलब क्या है, विष्णु आराध्यते, कि वो डायरेक्ट से भगवान विष्णु का उनको आराधना कर रहा है। यदि वो अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक से पालन कर रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है कि वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए अपने कारण अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार हमारा कार्य है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो भगवान ने बताया कि वो त्याग या तो राजसी है या तामसी है। वास्तव में त्याग ना क्या है, भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में बहुत ही सुंदर बताएंगे श्लोक नंबर 18.9 में, 18वें अध्याय अंत में भगवान ने वापस से यही टॉपिक्स बताए हैं। भगवान इतने सुंदर तरीके से सात्विक कर्म के विषय में बताया। 18.9 में भगवान कहते हैं कालमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। ये अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है कि बस मुझे ये करना है, मेरी ड्यूटी है मुझे करना है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, लेकिन इसमें कोई आसक्ति नहीं रखता, भौतिक आसक्ति नहीं रही, फल की आकांक्षा नहीं रही, तो उसका त्याग सात्विकी कहलाता है। फिर उससे बंधन नहीं बंधेगा क्योंकि ये अभौतिक फल की आसक्ति को त्यागा फिर सात्विक में आ गया और त्याग के वो फल भगवान को अर्पण कर दिया, कृष्ण को अर्पण कर दिया, तो शुद्ध सात्विक स्टेज पे आ गया। तो इससे केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही इससे पता चलता और कृष्ण की प्रसन्नता वाले कार्य जो है वो कभी भी नहीं बांधेंगे। इसे बताया ना कि मुक्त संग समाज, तो फिर वो तो आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, कभी भी बंधन प्रदान नहीं करेंगे। इस श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अब जो भी कर्म कर रहे हो वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे श्लोक प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको गौर से आप सुनो। श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में किया जाने वाला अन्य दूसरा कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अच्छे तथा बुरे, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर कोई जीव अपने जीवन का उद्देश्य देश की सेवा कि बस मुझे अपने देश की सेवा करना ये उद्देश्य बनाते हो, या कोई ये सोचता है कि मैं अपने परिवार की सेवा करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाता, या समाज सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन यदि वो इसमें ये नहीं सोच रहा है कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, केवल अपने जीवन का एक अच्छा उद्देश्य बनाया, यहाँ पर साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, फिर वो दूसरे जन्म में उसी के अनुसार। अभी देखो महाराजा भरत ने अच्छा काम किया था, वो हिरण के ना, क्योंकि अभी हिरण का छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने सोचा था कि अगर मैं इसको नहीं पालूंगा, इसकी संरक्षक मैं नहीं बनूंगा तो क्या होगा, कोई शेर आएगा या कोई भी जंगली जानवर आएगा इसको खा जाएगा, तो मुझे इसकी ना केयर करनी चाहिए। ये सोचकर कि मेरा कार्य इसकी केयर करना है। अब वो जीव हो चाहे मनुष्य हो या पशु हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि मेरा कर्तव्य है, एक अच्छा काम है, मुझे यही कार्य करना है, तो यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छे तथा बुरे कार्य जो है वो आपके बंधन, उस टाइम पर उन्होंने अच्छा कार्य किया और दूसरे जन्म में उसको हिरण बनना पड़ा क्योंकि आसक्ति हो गई अपने कर्म से। उसी तरह यदि आज हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर किसी के लिए कुछ भी, अगर कोई भी सोशल वर्क अच्छा कर रहे हैं या कोई भी अन्य दूसरा कार्य कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, यदि हमारा उद्देश्य केवल उसी में आसक्ति जमा कर कार्य करना है तो फिर दूसरे जन्म में उसी देश का कुत्ता बनकर आ सकते हैं, है ना। कुत्ते की तरह कार्य कर रहे हैं ना भाई, मैं वफादार हूँ। लेकिन वफादारी आपको देश के साथ नहीं, वफादारी आपको कृष्ण के साथ निभानी है क्योंकि आप वास्तव में भगवान के दास हो। तो भगवान ने जो आपको ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हैं उसी ड्यूटीज को पालन करना है आपको, उसी ड्यूटीज को है ना करना है जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो समाज सेवा हो चाहे वो परिवार सेवा हो, केवल और केवल उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना। इसी से क्या होगा, मुक्त संग समाज, इसी से आप कर्म बंधन से छूट सकोगे। वरना अन्यत्र लोकेयम कर्म बंधन, इसके अतिरिक्त जो भी करोगे तो कर्म का बंधन बंधेगा। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने जो बोला है एक बार उसको फिर से सुने, इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी दूसरा कर्म बंधन का कारण होगा क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यदि वो ऐसा कार्य करता है यानी भगवान कृष्ण भावना भावित होकर कोई कार्य करता है तो वो कर्मों के बंधन से मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है। अब कर्म कौशल का क्या मतलब है, भगवान ने ऐसे भी बोला योग कर्म से कौशल। कर्म कौशल का मतलब होता है तुम कार्य करो और कार्य की कारण बंधन में ना फंसो, इसको बोलते कर्म कौशल। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो और यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया कि आप ऐसे ही नहीं सोच सकते हो, ऐसे ही बस आप अभी बैठे हो और सोचो कि अब मैं जो भी कार्य करूंगा वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूंगा और आसक्ति नहीं रखूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके हृदय के अंदर जो जन्म जन्मांतर से भौतिक आसक्ति घर कर गई है उसको हटाने के लिए, उसको हृदय की मलिनता ही यही है कि वो भौतिक आसक्ति है, भौतिक काम भौतिक वासनाएं हृदय के अंदर भरी हुई हैं, तो ये एकदम से नहीं खत्म होंगी। इसके लिए कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक माहिर, कुशल का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट, गुरु की निर्देशन की आवश्यकता है, एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। अब अर्जुन को तो डायरेक्ट से भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर हम भगवत भक्त यानी गुरु, जो गुरु होते हैं शुद्ध गुरु, शुद्ध वैष्णव होते हैं जैसे गुरु साधु और शास्त्र, उनके अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो वो वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हम डायरेक्ट से भगवान के आदेशों का पालन करके कार्य करते हैं। क्योंकि गुरु साधु और शास्त्र केवल भगवान के आदेश ही आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। यहाँ पर किस बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो आखिरी वर्ड लिखा ना भगवान ने, मुक्त संग समाचर सम आचर। सम का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छा अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जान छुड़ाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं कि मनुष्य को परिश्रम पूर्वक काम करना चाहिए, यानी बहुत अच्छे तरीके से हृदय से कार्य करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो सके। हृदय के अंदर एक ही इच्छा हो कि मैं कार्य कर रहा हूँ तो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मन अक्सर बोलता है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है ये कार्य करने का। तो मन तो बेवकूफ है, मन आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यही एक सही विधि है अपने भवबंधन से छूटने के लिए। तो इसे हमें हमेशा अपने मन को बुद्धि से समझाना चाहिए कि देखो हम इस जन्म में आए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना है, इससे हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। और जब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे फिर क्या होगा, फिर मुक्त हो जाएंगे कर्म बंधन से और कृष्ण अपने धाम में बुला लेंगे। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेंगे, फिर तो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा अभिचते न प्रसिद्धि है कर्मण, तो फिर हम अपनी शरीर यात्रा को ही कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। आगे है कि इस विधि से ना केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाती है। यदि हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार, अब इसका मतलब ये है कि आप कार्य भी करो और उसके साथ श्रवण और कीर्तन भी करो, है ना। ऐसे नहीं है कि केवल कर्तव्य को ही सब कुछ जान कर समस्त बाकी सब छोड़ दो, खाली कर्तव्यों को ही पालन करो, नहीं। हमें क्या करना है, वैसे तो अगर देखा जाए तो आज ये हमारा समाज वर्णाश्रम धर्म को बिल्कुल भूल चुका है। किसी को पता ही नहीं है कि मेरा वर्ण क्या है, मेरा आश्रम क्या है। तो यहाँ पर हमें भगवान बताते हैं कि आपका कार्य क्या है भगवान को प्रसन्न करना। तो गुरु और साधु शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी कथाओं का जब गान होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो ये कार्य हमें अनिवार्य करने हैं। श्रवण और कीर्तन करते करते यदि हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो यहाँ पर देखा, इससे मनुष्य क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है, यानी कि भगवान की प्रेम, क्योंकि श्रवण भी कर रहे हैं और फिर साथ में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो हृदय के अंदर भगवान की प्रेम भक्ति जो सुप्त अवस्था में है, तो कृष्ण का चिंतन करते करते वो बढ़ जाएगी और जो भगवत धाम ले जाने वाली, और इसी से हमारी मुक्ति होगी, इसी से हम जन्म मरण के चक्कर से, भाव बंधन के चक्कर से और अच्छे और बुरे रिजल्ट जो कर्म के निकलते हैं उन कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसी इस श्लोक का उद्देश्य क्या था कि भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है और कृष्ण को हर चीज का केंद्र बनाना है, इसी से भवबंधन से मुक्ति होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।